एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो वाकई दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलने की ताकत रखती है।
हाँ, नाम है सुपर फ्रीकोनॉमिक्स और इसे लिखा है स्टीवन लेविट और स्टीफन डबनर ने।
बिल्कुल, और ये किताब आज भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है।
क्यों?
क्योंकि ये हमें रोजमर्रा की चीजों और बड़ी सामाजिक गुत्थियों को समझने के लिए अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के चश्मे का इस्तेमाल करना सिखाती है।
हाँ, लेकिन बिल्कुल अनोखे अंदाज में। ये उन छिपे हुए कारणों, उन इंसेंटिव्स या कहले प्रोत्साहनों की बात करती है जो हमारे फैसलों और व्यवहार को अनजाने में ढालते हैं।
बिल्कुल, ये एक तरह से हमें जासूस बनने के लिए उकसाती है, मतलब सतही बातों से परे जाकर ये सवाल पूछने के लिए कि दुनिया असल में चलती कैसे है। हाँ, खासकर तब जब हम अपनी भावनाओं या सुनी सुनाई बातों को थोड़ा किनारे रखकर सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों यानी डेटा पर ध्यान दें।
तो चलिए इस दिलचस्प सोच की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं।
तो पहले ये जानते हैं कि इस अनोखी सोच के पीछे दिमाग किसका है।
ये लेखक भी कमाल की जोड़ी है। पहले हैं स्टीवन डी लेविट।
हाँ, शिकागो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री के प्रोफेसर हैं।
और कोई ऐसे वैसे प्रोफेसर नहीं, इन्हें जॉन बेट्स क्लार्क मेडल मिल चुका है। ये अमेरिका में 40 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री को दिया जाता है।
अच्छा, कई लोग तो इसे नोबेल पुरस्कार की पहली सीढ़ी मानते हैं ना।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन लेविट की असली पहचान ये है कि वो पारंपरिक अर्थशास्त्री नहीं है।
हाँ, उनकी दिलचस्पी शेयर बाजार या महंगाई दर में उतनी नहीं है।
सही कहा, उनकी दिलचस्पी है अपराध, शिक्षा, धोखाधड़ी जैसे जमीनी सामाजिक मुद्दों में अर्थशास्त्र के सिद्धांत लगाने में।
और उनकी खासियत है मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने के नायाब तरीके खोजना।
बिल्कुल, और उनके जोड़ीदार हैं स्टीफन जे डबनर। वो एक माहिर पत्रकार और लेखक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन जैसे बड़े नामों के लिए लिख चुके हैं।
अच्छा,
डबनर का कमाल यह है कि वो लेविट के जटिल विश्लेषण और आंकड़ों को दिलचस्प कहानियों और असल जिंदगी के उदाहरणों में बदल देते हैं।
हाँ सही कहा, एक तरफ लेविट का तेज दिमाग और डेटा पर आधारित विश्लेषण, तो दूसरी तरफ डबनर की कहानी कहने की कला। इनकी पहली किताब फ्रीकोनॉमिक्स ने तो दुनिया भर में धूम मचा दी थी।
हाँ, वो तो बहुत चली थी। सुपर फ्रीकोनॉमिक्स उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है और भी बड़े और ज्यादा चौंकाने वाले सवालों के साथ।
ये जोड़ी एकेडमिक दुनिया की गहरी बातों को आम लोगों तक पहुंचाने में वाकई माहिर है।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में? सुपर फ्रीकोनॉमिक्स हर चीज के छिपे हुए पहलू को खंगालने का एक कह सकते हैं साहसिक सफर है।
हाँ, दुनिया को देखने का एक नया लेंस देती है, एक नया चश्मा। ये कहती है कि जो दिख रहा है या जो सब मान रहे हैं जरूरी नहीं वही सच हो।
बिल्कुल, असलियत अक्सर छुपी होती है और उसे समझने के लिए हमें पूर्वाग्रहों से हटकर एक जासूस की तरह सोचना होगा।
सही, ये किताब किसी अर्थशास्त्री के लिए नहीं है।
सिर्फ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए जिसके मन में सवाल उठते हैं, जो पहेलियां सुलझाना पसंद करता है और जो अपनी बनी बनाई सोच को चुनौती देने के लिए तैयार है।
ये किताब हमें कई अलग अलग दुनियाओं की सैर कराती है ना।
हाँ बिल्कुल, शिकागो की सड़कों पर वेश्याओं के काम करने के तरीकों से लेके एक आतंकवादी गुट ज्ञानवर्धी सोच तक, फिर 19वीं सदी के वियना के एक मेडिकल रहस्य से लेकर
ग्लोबल वार्मिंग को हल करने के भविष्य के अजीब लगने वाले तरीकों तक, सब कुछ है इसमें।
हर अध्याय एक पहेली की तरह शुरू होता है और फिर लेखक डेटा और आर्थिक तर्क का इस्तेमाल करके उसे परत दर परत खोलते हैं।
और पूरी किताब में एक बात साफ दिखती है, लेखक सही गलत का फैसला नहीं सुनाते।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ ये पूछते हैं कि सबूत क्या दिखाते हैं। उनका नजरिया नैतिक फैसलों से परे अमोरल है, वो बस सिस्टम काम कैसे करता है ये समझने की कोशिश करते हैं।
और शायद इसी वजह से वो अक्सर ऐसे नतीजों पर पहुंचते हैं जो हमें चौंकाते हैं और सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
चलिए अब कुछ ऐसे उदाहरणों पर गौर करते हैं जो वाकई सोचने का तरीका बदल देते हैं। किताब की शुरुआत में ही एक जबरदस्त कहानी है डॉक्टर इग्नास सिमिलविस की।
हाँ, 19 सेंचुरी के हंगेरियन डॉक्टर थे वो।
उन्होंने देखा कि अगर डॉक्टर डिलीवरी से पहले अपने हाथ क्लोरीन के घोल से धो लें तो जच्चा बच्चा वार्ड में बच्चों की मौतें अचानक बहुत कम हो जाती हैं।
बिल्कुल, और उनके पास इसका साफ डेटा था, सबूत था।
लेकिन कमाल देखिए, उस जमाने के मेडिकल जगत ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया।
हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है।
उन्हें ये मानना गवारा नहीं था कि वे खुद यानी डॉक्टर ही अनजाने में मौत का कारण बन रहे थे। ये कहानी इस किताब की मुख्य थीम को दर्शाती है। डेटा पर आधारित सच अक्सर हमारी पुरानी धारणाओं या मान्यताओं से टकराता है।
और लोग विरोध करते हैं?
हाँ, लोग ऐसे सबूतों का विरोध करते हैं जो उनकी सोच या उनके रुतबे के खिलाफ जाते हों।
अब आते हैं अध्याय एक पर। सवाल है, एक सड़क पर काम करने वाली वेश्या और डिपार्टमेंट स्टोर के सेंटा क्लॉज में क्या समानता है? सुनने में अजीब है ना?
हाँ, बिल्कुल अजीब है, लेकिन ये अध्याय दिखाता है कि कैसे बुनियादी आर्थिक सिद्धांत जैसे मांग, आपूर्ति, जोखिम, ये अलग अलग तरह के काम पर लागू होते हैं।
लेखक शिकागो की वेश्याओं से मिले डेटा का विश्लेषण करते हैं।
हाँ, और वो पाते हैं कि सड़क पर काम करने वालों को बहुत कम पैसे के लिए भयानक जोखिम उठाने पड़ते हैं, हिंसा, बीमारी, गिरफ्तारी।
लेकिन क्यों?
क्योंकि इस काम के लिए ज्यादा हुनर नहीं चाहिए, बहुत लोग ये काम कर सकते हैं और काम मिलना भी आसान है।
अच्छा।
वहीं दूसरी तरफ जो ऊंचे दर्जे की एस्कॉर्ट्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा कमाती हैं और सुरक्षित माहौल में काम करती हैं।
उनका क्या कारण है?
क्योंकि वो एक खास सेवा देती हैं। इस काम में आना मुश्किल है, मतलब रूप, बुद्धि, संपर्क चाहिए और मांग ज्यादा है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ज्यादा जोखिम वाले या मुश्किल काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। अर्थशास्त्री इसे क्षतिपूर्ति अंतर यानी कॉम्पनसेटिंग डिफरेंशियल्स कहते हैं, यानी जोखिम की भरपाई।
और सेंटा क्लॉज वाला उदाहरण?
वो दिखाता है कि कैसे कम समय के लिए मांग बढ़ने से तनख्वाह बढ़ जाती है। मतलब छुट्टियों में सेंटा की मांग बढ़ती है तो उनकी तनख्वाह भी।
समझा। अध्याय तो एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल पूछता है, आत्मघाती हमलावरों को जीवन बीमा क्यों खरीदना चाहिए?
हाँ, ये आतंकवाद की दुनिया में उतरता है और तर्क देता है कि सबसे अजीब लगने वाले इंसानी बर्ताव को भी प्रोत्साहनों मतलब इंसेंटिव्स के नजरिए से समझा जा सकता है।
लेखक इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि आतंकवादी सिर्फ पागल या मनोरोगी होते हैं।
बिल्कुल, वो उन्हें ऐसे लोगों के तौर पर देखते हैं जो सोच समझ कर फैसले लेते हैं, बस उनके प्रोत्साहन अलग होते हैं।
जैसे
आत्मघाती हमलावर के लिए ये काम शहादत, नाम कमाने और अपने परिवार के लिए संगठन से पैसे पाने का जरिया हो सकता है।
लेकिन जीवन बीमा, वो तो उल्टा लगता है।
हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन लेखक इसे संकेत, सिग्नलिंग के तौर पर समझाते हैं। बीमा खरीदने वाला आतंकवादी संगठन को यह संकेत दे रहा है कि वो भरोसेमंद है, अपने काम के प्रति समर्पित है और योजना बनाकर चलता है।
अच्छा, और शायद परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा भी।
हाँ, वो भी।
अध्याय तीन बात करता है उदासीनता और परोपकारिता की, मतलब जब लोग मदद करते हैं या नहीं करते। इसमें किटी जेनोविस मामले का जिक्र है।
हाँ, जिसकी 1964 में न्यूयॉर्क में हत्या हुई और कहा गया कि 38 लोगों ने देखा पर कुछ नहीं किया। हालांकि लेखक बताते हैं कि असल कहानी को मीडिया ने काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था।
अच्छा, मतलब पूरी कहानी वैसी नहीं थी?
पूरी तरह नहीं, लेकिन इस कहानी से बाईस्टैंडर इफेक्ट का सिद्धांत सामने आया जो सच है।
वो क्या है?
यानी जब किसी आपात स्थिति में बहुत सारे लोग मौजूद हों तो किसी एक व्यक्ति के आगे बढ़कर मदद करने की संभावना कम हो जाती है,
क्योंकि हर कोई सोचता है कि कोई और करेगा।
बिल्कुल, लेखक लैब प्रयोगों का भी जिक्र करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ज्यादातर इंसानी उदारता या दान पुण्य पूरी तरह से निस्वार्थ प्योर एल्ट्रिज्म नहीं होता।
तो फिर क्या होता है?
वो अशुद्ध परोपकारिता या इम्प्योर एल्ट्रिज्म या वार्म ग्लो एल्ट्रिज्म होता है।
वार्म ग्लो, इसका मतलब?
इसका मतलब ये नहीं कि मदद बुरी है, बल्कि ये कि हम सिर्फ दूसरों के भले के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी देते हैं क्योंकि इससे हमें खुद अच्छा महसूस होता है। वही वार्म ग्लो या समाज में हमारी छवि अच्छी बनती है।
दिलचस्प। अध्याय चार का शीर्षक है समाधान मौजूद है और ये सस्ता और सरल है।
हाँ, ये तर्क देता है कि हम अक्सर समस्याओं का सही कारण नहीं समझते और आसान सस्ते समाधानों को नजरअंदाज करके मुश्किल और महंगे समाधानों के पीछे भागते हैं।
और इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण, वो नशे में गाड़ी चलाने और नशे में पैदल चलने की तुलना।
बिल्कुल, समाज ने नशे में गाड़ी चलाने से रोकने के लिए अरबों खर्च किए हैं।
हाँ, ये तो है,
लेकिन आंकड़े बताते हैं कि प्रति किलोमीटर के हिसाब से देखें तो नशे में गाड़ी चलाने वाले की तुलना में नशे में पैदल चलने वाले के मारे जाने का खतरा लगभग 8 गुना ज्यादा होता है।
8 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ, और नशे में चलने से होने वाली कुल मौतें बहुत ज्यादा हैं। दिक्कत सोच की है, नशे में गाड़ी चलाने वाले को विलेन माना जाता है जो दूसरों को खतरे में डालता है,
जबकि नशे में चलने वाले को बेचारा बेवकूफ पीड़ित।
बिल्कुल, हम अपना सारा गुस्सा और संसाधन पहले वाले पर लगाते हैं, जबकि दूसरे वाले के सांख्यिकीय रूप से बड़े खतरे को अनदेखा कर देते हैं।
इसी तरह कार दुर्घटनाओं में बच्चों की मौतों का एक बड़ा कारण खराब कार सीटें नहीं थीं,
हाँ,
बल्कि ये था कि माता पिता उन्हें ठीक से लगाते नहीं थे। समाधान बेहतर सीटें नहीं बल्कि बेहतर निर्देश और जानकारी थी, एक बड़ी समस्या का सस्ता सा हल।
मतलब सही जगह ध्यान देना जरूरी है।
बिल्कुल।
और फिर आता है अध्याय 5, जो शायद सबसे विवादास्पद है। अल गोर और माउंट पिनाटुबो में क्या समानता है?
हाँ, ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर आर्थिक सोच लागू करता है।
लेखक मानते हैं कि वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि धरती इंसानी गतिविधियों के कारण गर्म हो रही है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन
वो इस समस्या के मौजूदा समाधानों जैसे कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती की लागत और व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हैं।
वो क्यों?
वो तर्क देते हैं कि ये समाधान बहुत ज्यादा महंगे हैं, इनके लिए जिस वैश्विक सहयोग की जरूरत है वो शायद ही मुमकिन हो।
हाँ, क्योंकि हर देश चाहेगा कि दूसरा ज्यादा करे, वो फ्री राइडर प्रॉब्लम वाली बात।
सही, और लंबे समय में तापमान पर इनका असर भी शायद उतना न हो जितना सोचा जा रहा है। फिर वो भू अभियांत्रिकी यानी जियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र की बात करते हैं।
जियो इंजीनियरिंग वो क्या है?
यानी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में जानबूझकर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना।
अच्छा, जैसे?
वो एक विचार पर रोशनी डालते हैं, स्ट्रेटोशील्ड। ये विचार 1991 में माउंट पिनाटुबो जैसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रेरित है।
हाँ, जब वो फटा था
तो उसने ऊपरी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड फैला दिया, जिसने सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजा और धरती कुछ समय के लिए ठंडी हो गई।
तो प्रस्ताव क्या है?
प्रस्ताव ये है कि एक बहुत लंबी नली या अन्य तरीकों से ऊपरी वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पंप किया जाए जानबूझकर।
लेकिन क्या लेखक इसे अंतिम समाधान बता रहे हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वे इसे सिर्फ समस्या के बारे में अलग ढंग से सोचने का एक उदाहरण दे रहे हैं। ये प्रस्तावित तरीका कार्बन कटौती की तुलना में बेहद सस्ता है, तेजी से काम कर सकता है और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो इसे रोका भी जा सकता है।
लेकिन इसके जोखिम भी तो होंगे।
हाँ, लेखक मानते हैं कि इसके अपने अनदेखे जोखिम हो सकते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या इतनी बड़ी है और मौजूदा तरीके इतने नाकाफी लग रहे हैं कि इस तरह के क्रांतिकारी भले ही विवादास्पद विचारों पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। ये सारी बातें किताब में लेखकों के विश्लेषण पर आधारित हैं, उनका अपना नजरिया है।
समझा। और आखिर में उपसंहार, बंदर भी इंसान है, ये क्या है?
हाँ हाँ हाँ, ये हल्के फुल्के लेकिन गहरे अंदाज में बात खत्म करता है। इसमें एक प्रयोग का वर्णन है जहाँ कैपुचिन बंदरों को पैसे, छोटे डिस्क का इस्तेमाल करके खाना खरीदना सिखाया गया।
अच्छा, बंदरों को?
हाँ, बंदरों ने जल्द ही व्यापार के सिद्धांत सीख लिए, लेकिन उन्होंने इंसानों जैसे अतार्किक आर्थिक व्यवहार भी दिखाने शुरू कर दिए।
जैसे
नुकसान से ज्यादा डरना, लॉस अवर्जन, मतलब जितना दुख एक रुपया खोने से होता है उतनी खुशी एक रुपया पाने से नहीं होती, और यहाँ तक कि वैश्यवृत्ति भी
बंदरों में भी।
हाँ, ये दिखाता है कि हमारे कई आर्थिक फैसले शायद हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसे हुए हैं, शायद विकास क्रम का हिस्सा हैं।
वाह, तो इस पूरी किताब से मुख्य बातें या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हमें कुछ एक पॉइंट्स में बताना हो?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स हमारे आज के जीवन की बुनियाद हैं, वो हर चीज को चलाते हैं।
बिल्कुल, चाहे वो जोखिम और इनाम का हिसाब लगाती वेश्या हो, अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देता आतंकवादी हो, या अच्छा महसूस करने के लिए दान करने वाला व्यक्ति, हर व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं कोई प्रोत्साहन काम कर रहा होता है।
हाँ, और अगर आप इन प्रोत्साहनों को समझ लें, चाहे वो पैसे के हों, सामाजिक हों, नैतिक हों, तो आप व्यवहार को बेहतर समझ सकते हैं, शायद बदल भी सकते हैं।
दूसरी अहम बात, हमारी आम समझ या पारंपरिक सोच अक्सर गलत साबित होती है।
बिल्कुल, किटी जनोवस की कहानी से लेकर नशे में गाड़ी चलाने पर हमारे भावनात्मक जोर तक, किताब बार बार दिखाती है कि जो सब जानते हैं वो अक्सर सच नहीं होता।
ये हमें थोड़ा शक्की बनने, मान्यताओं पर सवाल उठाने और सबूत मांगने के लिए प्रेरित करती है। अपने यहाँ भी हम देखते हैं ना, कैसे सुनी सुनाई बातें या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हमें असलियत से दूर ले जाते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
तीसरा, छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने में डेटा की ताकत, आंकड़ों की शक्ति।
हाँ, वो तो साफ, वेश्याओं की कमाई हो, आतंकवादियों के बैंक खाते हों, या जलवायु मॉडल आंकड़ों को सही तरीके से देखकर लेखक ऐसे पैटर्न और कारण खोज निकालते हैं जो हमें यूं ही दिखाई नहीं देते। ये विचारधारा या भावनाओं पर आधारित समाधानों के बजाय डेटा आधारित नजरिए की वकालत करते हैं।
और चौथा, सही सवाल पूछने का महत्व, ये बहुत जरूरी लगा मुझे।
हाँ, ये नजरिया सिर्फ जवाब ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि सवालों को नए तरीके से पूछने के बारे में है। आतंकवादी बुरे क्यों होते हैं, ये पूछने के बजाय वो पूछते हैं कौन से प्रोत्साहन किसी को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
और इस तरह सवाल बदलने से अक्सर बिल्कुल नए समाधानों के दरवाजे खुल जाते हैं।
बिल्कुल। पांचवा, समस्याओं को उनके पैमाने और लागत प्रभावशीलता कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हिसाब से सोचना,
मतलब समस्या कितनी बड़ी है और समाधान कितना महंगा या सस्ता और असरदार है।
हाँ, हम अक्सर अपनी समस्याओं के आकार के हिसाब से समाधान नहीं चुनते। हम भावनात्मक रूप से सही लगने वाले लेकिन शायद बेअसर समाधानों पर बहुत पैसा और ऊर्जा खर्च कर देते हैं,
जबकि बड़ी समस्याओं के सस्ते सरल समाधानों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे नशे में चलने वाला उदाहरण या कार सीट वाला।
बिल्कुल।
वो ग्लोबल वार्मिंग वाला अध्याय भी इसी का सटीक उदाहरण है।
और आखिर में, जैसा आपने पहले कहा, किसी चीज के काम करने के तरीके का विश्लेषण करना, जो नैतिक रूप से तटस्थ या एमोरल है, और ये फैसला सुनाना कि वो सही है या गलत, मॉरल जजमेंट, इन दोनों में फर्क है।
हाँ, और लेखक पहले वाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विश्लेषण पर। नैतिकता पर फैसला सुनाना उनका काम नहीं है इस किताब में।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं ना, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ बिल्कुल।
जैसे एक मुख्य विचार ये है, किसी समस्या को हल करना काफी मुश्किल है। ये और भी मुश्किल हो जाता है अगर आप उसे पहली नजर में ठीक से देखने को ही तैयार ना हो।
ये बात किताब के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर जोर देती है, मतलब पहले समस्या को बिना किसी लाग लपेट के समझो।
हाँ, लेखक कहते हैं कि समाज की कई बड़ी समस्याएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हम अपनी नैतिक असहजता या राजनीतिक झुकाव को समस्या की असली वजहों को ईमानदारी से समझने के आड़े आने देते हैं।
एक और बुनियादी सिद्धांत है, लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, लोग होते हैं और वे प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया देते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये आसान लेबल लगाने से मना करता है और व्यवहार को ढालने वाली बाहरी ताकतों और अंदरूनी प्रेरणाओं पर ध्यान देने को कहता है।
मतलब अगर आप व्यवहार बदलना चाहते हैं, चाहे दान को बढ़ावा देना हो या अपराध को कम करना, तो आपको प्रोत्साहन की व्यवस्था को बदलना होगा।
बिल्कुल। एक और दिलचस्प विचार, खासकर जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल समस्याओं के लिए, जब आप नहीं जानते कि क्या करना है तो कभी कभी कुछ न करना एक अच्छा विचार होता है।
अच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं?
हैं, ये बौद्धिक विनम्रता की बात करता है। लेखक एक्शन बायस के खिलाफ चेतावनी देते हैं, यानी कुछ न कुछ करने के लिए मजबूर महसूस करने की प्रवृत्ति, भले ही वो काम बेअसर हो या नुकसानदायक, सोच समझकर कदम उठाओ।
और परोपकारिता पर ये विचार, परोपकारिता के बारे में बात यह है कि यह नैतिक स्थिति उतनी नहीं है जितनी यह एक विलासिता की वस्तु है।
हाँ, ये उस अशुद्ध परोपकारिता वाले निष्कर्ष को समेटता है। ये इशारा करता है कि बड़े पैमाने पर निस्वार्थ व्यवहार उन समाजों में ज्यादा आम है जो सुरक्षित और समृद्ध हैं। जहां बहुत कमी या खतरा हो, वहां खुद को बचाने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें लागू कैसे किया जा सकता है?
देखिए, कई तरीकों से। जैसे अपने निजी फैसलों में हम ये पहचानना सीख सकते हैं कि हमारे विकल्पों के पीछे कौन से छिपे हुए प्रोत्साहन काम कर रहे हैं।
जैसे
मान लीजिए कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इसे इसकी जरूरत के लिए खरीद रहा हूं या इसलिए कि ये समाज में मेरा स्टेटस दिखाएगा। ये हमें जोखिमों का आकलन भी डेटा के आधार पर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे वो नशे में चलने वाला उदाहरण दिखाता है।
हाँ सही है, दफ्तर और बिजनेस में भी ये सोच काम आ सकती है।
बिल्कुल। मैनेजर कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रोत्साहन योजनाएं बना सकते हैं जो सिर्फ बोनस से आगे हों। ग्राहक क्या चाहते हैं ये समझने के लिए लीक से हटकर डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और मार्केटिंग वाले वो वार्म ग्लो वाली बात इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, वार्म ग्लो वाले विचार को समझकर सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे से जुड़े उत्पादों के लिए ज्यादा असरदार अभियान बना सकते हैं।
पालन पोषण और शिक्षा में भी।
हाँ, कार सीट वाली कहानी माता पिता के लिए एक सबक है कि इस बात पर ध्यान दें कि असल में क्या सुरक्षित है, न कि सिर्फ उस पर जो सुरक्षित महसूस होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम बच्चों के लिए कैसे प्रोत्साहन बना रहे हैं, अच्छे या बुरे।
और सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण में तो ये बहुत काम का है।
यकीनन, ये सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करने का एक शक्तिशाली ढांचा देता है। हम नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों का ज्यादा आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं।
हम पूछ सकते हैं, क्या यह समाधान समस्या के पैमाने के बराबर है? इसके अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या ये नीति डेटा पर आधारित है या सिर्फ नैतिक गुस्से पर?
हाँ, जैसे अपने यहाँ हम किसी सरकारी योजना की सफलता का मूल्यांकन सिर्फ घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीनी आंकड़ों और उसके वास्तविक असर से कर सकते हैं।
लेकिन शायद सबसे बड़ा फायदा एक जिज्ञासु, थोड़ा शक्की और विश्लेषण करने वाली सोच विकसित करना है।
मैं सहमत हूँ। ये किताब हमें जटिल समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ना, मुख्य प्रोत्साहनों को पहचानना, प्रासंगिक डेटा इकट्ठा करना और लीक से हटकर समाधानों के लिए खुला रहना सिखाती है।
तो सुपर्फ इकोनॉमिक्स हमें दुनिया को एक अलग, अक्सर चौंकाने वाले नज़रिए से देखने का न्योता देती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये रही कि कैसे साधारण लगने वाले सवालों के जवाब भी हमें हिला सकते हैं अगर हम सिर्फ डेटा और प्रोत्साहन पर ध्यान दें।
हाँ,
जैसे ये जानना कि नशे में गाड़ी चलाने से ज़्यादा खतरनाक नशे में चलना हो सकता है। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है और याद दिलाता है कि सिर्फ भावनाओं या आम धारणाओं पर भरोसा करना काफी नहीं है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि कैसे लेखक इतने विवादास्पद विषयों जैसे आतंकवाद या वेश्यावृत्ति का विश्लेषण बिना किसी नैतिक फैसले के केवल आर्थिक तर्क और डेटा के आधार पर करते हैं। ये दिखाता है कि समस्याओं की तह तक जाने के लिए कभी कभी अपनी भावनाओं और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना कितना जरूरी होता है। ये किताब निश्चित रूप से हमें एक ज्यादा जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक विचारक बनने की प्रेरणा देती है जो मान्यताओं पर सवाल उठाता है और सबूतों की तलाश करता है।
ये हमें सिखाती है कि दुनिया अक्सर उससे कहीं ज्यादा तार्किक होती है जितनी दिखती है। बस हमें सही लेंस से देखने की जरूरत है।
बिल्कुल सही कहा।
बिल्कुल
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।